राष्ट्र राधिका किसी अनंत महिमा है, कृष्ण भी नहीं वर्णन कर सकते तो हम लोग क्या करें। इसलिए अभी हम लोग अभी क्या कर रहे
हैं, हमारी प्रार्थना कर रहे हो, हमारे साथ में इस तरह से विराज करते हुए विराजमान हो। कल जब हम रात में आई थी तब तुमने हमारे साथ में वो धर्म का उपदेश क्यों प्रदान किया। श्याम सुंदर प्रियानंद के चरणों में झुकते हुए बोले, बोले स्वामी मैंने कभी भी आपसे आपको धर्मोपदेश नहीं दिया था, मैंने तो आपसे मिलन की प्रार्थना ही की थी। ऊपर से देखने में वो धर्मोपदेश था परंतु वो धर्मोपदेश नहीं था, मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा था, आपने मेरी प्रार्थना को समझा नहीं क्या। जरूर समझा होगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि गोपियों स्वागतम हो महाभागा प्रेम चिन्ह करवा रहे, वहां पर मेरा भाव यही था। बोले गोपियों आप शरीर की कोई भाग्यवती नहीं, मेरे शरीर का कोई भाग्यवान नहीं, आप महाभागा हो जो इस समय अनुरक्त है, आपका प्रिय आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। इस समय एकांत वृंदावन की शोभा का दर्शन करो, कैसी सुंदर श्री उद्दीपन विभाग श्रीमद वृंदावन की शोभा हो रही है। आपके हृदय में भी अपूर्ण रूप से मेरे प्रति प्रीति विराजमान है, स्वागतम महाभागा। पूरी जो रक्त सामग्री है वो सारी की सारी यहाँ पर उपस्थित है, बताओ प्रियंकन करवा रहा इस रक्त सामग्री के अनुसार आपकी सेवा करने के अतिरिक्त मैं और आपका क्या नहीं कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त तो पूरी करने की बात ही नहीं है, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैंने उपेक्षा नहीं की थी, मैंने तो आपकी प्रार्थना की थी। ये कहा था कि ब्रजस्या नंदन कश्यप ब्रज में सब कुशल है, गोपियों जिस भाव को लेकर के आई हो खबरदार उस प्रेम रस के अतिरिक्त कोई दूसरी बात को अब कहना ही मत। भूता गमन कारण जिस भाव को लेकर के आप यहाँ आई हो उस आगमन के कारण का ही बस वर्णन करो। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो आपसे प्रार्थना करते हुए कह रहा था कि रजनीशा अरोध रूपा आकार प्रश्लेष करके मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि आज कैसी सुंदर रात्रि है। अघोर सप्त विषय में था, घोर सप्त विषय में था नहीं बल्कि आकाश विश्लेष करके संधि को तोड़ करके आपको निकाल करके अघोर सप्त विषय में था कैसी सुंदर यहाँ पर पालतू अहिंसक जीव जंतु विराजमान है, केवल मृग मयूर शस आदि ही यहाँ पर विराजमान है अघोर सप्त विषय का। अतः प्रत्याप भजन नो अभी लोग करके मत जाओ कि यहाँ पर मेरे पास में ही रहो, हे सुमध्यमा हो आप भी सुंदरी मैं भी परम सुंदर, हमारे साथ में अपूर्व आय रस का विस्तार हो। तो मैंने उपेक्षा आपकी कब की थी, मैं तो आपसे ही कह रहा था कि दिक्कत में कुछ भी तो राकेश करने नहीं पर शोभा का नहीं कर रहा था वृंदावन की शोभा। मैं तो ये कह रहा था इसके गोपुर बाहर लौट करके जाने की जरूरत नहीं है, अभी लौट करके जाने की जरूरत नहीं है। आहा पति सती आप मुझमे ही प्रीति रखने वाली है, मुझ पति की ही आप सेवा कीजिए। अरे मेरे शरीर के वास्तविक प्रिय पति का त्याग करके जब तुम जगत के दिखाने वाले उन पति मंदिर लोगों की आराधना करोगी तो वह निंदनीय है। अस्वर्यम अय सत्यम तो अलगू कृष्ण भयावहम अरुपत्यम, पत्यम अनुपत्यम का तात्पर्य है पति के निकट रहना, उसको पत्नी का उसको मैंने नहीं करते पति मैंने पति पत्नी के निकट रहने का जो भाव उसका नाम ही है अनुपत्य। मूल पति को छोड़ करके और यदि अनुपत्य को ग्रहण किया जाए अपने पत्नियों के निकट रहा जाए तो यह तो उल्टा भयावह भयावह है, रस का विनाश कर देने वाला है। इससे गोपियों उन पति गुणों का त्याग करके मेरे पास में भी मेरे पास में ही रहो। शरणार्थ दर्शनार्थ ध्यानार्थ मैं आओ कीर्तना न तथा यथा सभी करते श्रवण करके ध्यान करके जैसे मुझसे प्रीति होती है वैसी प्रीति नहीं होती। श्रवणार्थ दर्शनार्थ ध्यानार्थ श्रवण दर्शन और ध्यान से या श्रवण में दर्शन करके या ध्यान में दर्शन करके श्रवण रूप दर्शन और ध्यान रूप दर्शन के द्वारा न तथा जैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती यथा तब निकटते जैसे निकट रहने पर होती है। इसलिए गोपियों आप मेरे पास में कृपा करके पढ़ाते हो, आप मेरे पास में ही अभी विराजमान हो। प्रत्याग का तो ग्रहण मैंने अपने हाथ से से विष्णु के मंदिर को अपूर्ण रूप से सजाया है, तो ग्रहण करते ही आप मैंने जो कुंज सजाई है उस कुंज में कृपा करके पढ़ा दिए ध्यान से प्रार्थना कर रही। ऐसे यहां पर ऊपर को दिखाने में श्री शांतनु ने ज्ञान में अर्थ किया कि भक्ति रामदेवों ने मेरी प्रार्थना पढ़े, निरंतर आई हूँ, किसी से अलग नहीं हूँ, ब्रह्म मनुष्य व्यापक होकर के विराजमान, वही एकमात्र सबका कारण होकर के विराजमान, मेरी माना से चिंतन हो उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वो परिच्छेद सामान्य अत्यंता भावक होकर के विराजमान, वो स्वयं शुद्ध भेद शून्य पदार्थ है, आज आज कहकर के उसके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है और ऐसा पदार्थ नहीं हूँ, इसलिए वो भी आपसे मेरा कोई जरूरत नहीं है। ये जो ज्ञान का उपदेश था, ये ज्ञान का उद्देश्य बाहरी था, वो भी हो भगवती नाम देवों में नहीं प्रार्थना करते, प्रार्थना करके कह रही है कि गोपियों आप ही विचार करो कि तथा हम के मन प्राण भूतेन्द्रीय गुणाश्रय है, मैं केवल देह में आपसे भिन्न हूं, परंतु मन प्राण भूत इंद्री और गुण इनमें मैं आपके साथ में ही जुड़ा हुआ हूं, आप ही बताओ मैं क्या आपसे अलग रह सकता हूं क्या? आज विधाता ने यहां पर बिजली में विधाता कौन है? बिजली में विधाता है जी जा सकते हैं, लेकिन जब क्या मित्र कहते हैं प्रेमा में से प्रभु न ही ले जाऊ संधान, इच्छा जानी लीला शक्ति कौन समाधान, प्रेमा विष्णु से प्रभु अपने आप को ईश्वर करके नहीं मानते हैं, यहां पर ब्रज में ईश्वर यदि कौन है तो कौन है? लीला शक्ति। तो श्री शामसुंदर कह रहे हैं बोल गोपियों केवल देह से अलग होकर के विराजमान हूं, आप ही मन में विचार करो, मन प्राण पंच महाभूत इंद्रिय ये सब को गुण ये सब आपका आश्रय लेकर के ही विराजमान है, मैं आपके हृदय में सर्वदा सर्वदा विराजमान, आपके गुणों का ही सदा आश्रय लेकर के दूर रह करके भी मैं अभी तक जीवित हूं, अतः तथा हम सब मैं केवल देह से अलग होकर के विराजमान हूं, मन प्राण भूत इंद्रिय गुण इंद्रियों के जितने भी गुण हैं उनमें आप मेरा स्मरण निरंतर निरंतर कर रही है, आप बताओ कभी भी आपके नैनों से मेरा रूप अलग हुआ? कभी भी आपके कानों से मेरा जो स्वर है वो अलग हुआ? अतः मैं देह मन प्राण इंद्री इन स्वरों में आपका ही आश्रय लेकर के विराजमान हूं, आपके पास में विराजमान हूं, आपसे अलग नहीं हूं, ये प्रार्थना है। और तीसरा जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ इसी प्रकार से कर रहे हैं बोले गोपियों जब जब भी आप मेरा स्मरण करती हो तब तब मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं, इसलिए गोपियों खबरदार मुझे आपसे इसे भिन्न करके मत मानना, भिन्न करके मत मानना, आत्मनेवात्मनात्मान सजे अन्यन पाले आत्मान भावे नो भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। श्री चांसलर तो सदस्य से बोले बोले आत्मनि एवं आत्मानम सृजे हंगी अनुपालन, ज्ञान प्रकाश कह रहे हैं बोले गोपियों मैं शुद्ध होकर के विराजमान हूं, और जब शुद्ध होकर के मैं विराजमान हूं तो मैं आपसे अलग हूं ही नहीं, गोपियों अतिरिक्त शक्ति के द्वारा मैं केवल आपके जगत में सर्वत्र विराजमान होते हुए भी मैं जगत में कभी भी आसक्त नहीं होता हूं, आत्मनिव आत्मानम आत्मना आत्मानम सृजे, मैं अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा अपने आप को ही प्रकट करता हूं, और आत्मायन भावे लो भूत इंद्रिय गुणात्मना, और मैं भूत इंद्रिय गुण इन सबों में विराजमान होकर के विराजमान हूं, मैं तो आत्मा ज्ञान वह शुद्धा कराए कि मैं आपके रोग में सर्वत्र विद्यमान हूं, आत्मा ज्ञान वह शुद्धा गोपियों मैं आत्मा हूं और मैं परम शुद्ध होकर के विराजमान हूं। शुद्ध का तात्पर्य है कि संसार मैं सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी ब्रह्म संसार के दोषों से युक्त नहीं होता, ये ज्ञान का अर्थ है। ज्ञान करके तुम चले, मैं आत्मा हूं, आत्मा जो है वो ज्ञानमय होकर के विराजमान है। ज्ञानमय का तात्पर्य है कि उसमें आनंद और ज्ञान की अतिशयता है। मैं प्रत्यय प्राथमिक अर्थ में ही प्रकट हो रहा है, मैं प्रत्यय विकार अर्थ में नहीं है। जहां पर आनंदमय विकासार्थ कहा गया वहां आनंदमय का तात्पर्य आनंद का विकार नहीं है बल्कि आनंद की प्रचुरता है। ब्रह्म आनंद की प्रचुरता से युक्त होकर ही विराजमान। यदि ये कहा जाए प्रचुर प्रकाश रवि, तो प्रकाश का विकार शून्य नहीं है बल्कि प्रकाश के अधिकता वाला होकर के ही पूरी विराजमान। अतः संपूर्ण आनंद एक ही विद्यमान है, तो वो संपूर्ण आनंद मुझ में ही विद्यमान है। तो आत्मा ज्ञानमय शब्द है, आत्मा ज्ञान रूप है और वह शुद्ध है। शुद्ध का तात्पर्य है कि वह कर्ता होने पर भी कर्तृत्व अनुमान से पूर्णी रहित है और माया में स्थित होने पर, संकल्प में स्थित होने पर भी माया के दोष ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते। व्यतिरिक्त वह सबसे अलग होकर के विराजमान है। जीवों के भीतर वो विद्यमान है, जीवों के भीतर विद्यमान होने पर भी व्यतिरिक्त है, जीव के प्रभावित नहीं होता। और अभिमान है गुरु में पहुंचे हुए भी गुरु के दोष ब्रह्म को नहीं लगते। सत्व रजतम ये तीन गुण हैं और इन गुणों के जो गुण दोष हैं वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते। सत्व का गुण है सत्वम लघु प्रकाशकम स्तम, रजोगुण का गुण है उपस्तंभकम चतम च रज, तमोगुण का स्वरूप है गुण वारण और तम प्रदीप वर्षवृत्ति। सत्व गुण प्रकाशक होता है, प्रिय होता है, कोई भी वस्तु अच्छी लगती है इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें सत्वगुण विराजमान है। सत्वगुण में लाघव होता है और वह प्रकाशक होता है और प्रिय होता है, सत्वगुण के एक गुण। रजोगुण जो है उसके दो गुण है, वह उपस्तंभकम और चलन, वह झांकने वाला होता है और चंचलता उत्पन्न करता है, गति उत्पन्न करने वाला होता है। और तमोगुण के फिर भी दो गुण है, गुरु और भारों में वह भारी होता है और झांकने वाला होता है, ज्ञान को रोकने वाला होता है। तो संसार की जितनी भी वस्तु है इन तीनों गुणों से कहीं न कहीं मिली हुई है। संसार की सभी वस्तु कहीं सुख देने वाली है, कभी दुख देने वाली है, कभी मोह देने वाली है, क्योंकि वे शुरू से मिलकर की बनी है। एक वस्तु एक काल में सुख देती है, वही वस्तु उसी व्यक्ति को दूसरे काल में सुख देती है, किसी व्यक्ति को उसी काल में सुख दे सकती है, किसी वस्तु को बाद में एक काल में सुख दूसरे काल में दुख तीसरे काल में मोह प्रदान करने वाली होती है, हो सकती है। परंतु ये अभिमान है, भगवान कह रहे हैं जगत में सम्य विद्यमान होंगे, मैंने ही जगत को अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रकट किया, परंतु माया शक्ति के दोष मुझ में नहीं आते क्योंकि मैंने माया शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। अगर माया के दोष माया में ही रह जाते, जगत के दोष जगत में ही रह जाते, जगत के दोष मुझ में नहीं आते, ईश्वर में नहीं आते हैं। जो निमित्त कारण है उस निमित्त कारण में नहीं आते। उपादान के रूप में वो जगत को प्रकट कर रहा है, प्रकृति अस्थि उपादान, प्रकृति जो है वो उपादान कारण होकर के विराजमान, प्रकृति अलग है नहीं, भगवान ही प्रकृति के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और आधार पुरुष पर आधार जो है वो पुरुष होकर के विराजमान। सुषुप्ति स्वप्न जागृत भी माया बनती ही किए थे, परंतु ब्रह्म सौम्य विद्यमान है, इस बात को जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में देखा जा सकता है। जागृत अवस्था में यदि आत्मा विराजमान नहीं होगी तो क्या इंद्रियां काम कर सकती थी? आत्मा जिस समय चली जाती है, अगर हट जाती है, उस समय फूल देह बना रहता है, मृत देह बना रहता है, वो काम नहीं करता है। अतः जागृत के द्वारा भी पता लगता है कि चलाने वाला आत्मा ही है। स्वप्न में भी इस फूल शरीर को सो गया, परंतु मन को विषयों को भुगाने वाला जब कोई है तो वो आत्मा ही है। जितना हम सो रहे होते हैं उस सोते समय हमारा मन ही भोक्ता बन जाता है, मन ही ग्राहक बन जाता है और मन ही विषय बन जाता है। जागृत अवस्था में इस फूल शरीर भोक्ता है, इंद्रियां ग्राहक है, اور شبدت پر جو روپ اسکول یہ وشے ہو کر کے براجمان سوپن میں اسکول شریف گراہک کے لیے اسکول شریف کو چھو رہا ہے پانچ من جو ہے وہی بھوکتا من ہی گراہک اور من ہی بھوک کے بن جاتا ہے ویکتی جس میں سو رہا ہے اور وہ یہ کوئی کئی بالکل بھوکا ویکتی ہے اور بھوکا ہوا بھوکا ویکتی سو رہا ہے پرنتو اس کو سپن میں دکھ رہا ہے کہ آہ میں تو رب نے پوچھا کھا رہا ہوں رب اللہ کھا رہا ہوں تو رب اللہ بھی کھا گیا ہے رب اللہ رہے تو ہے نہیں پر اسکول میں تو ہے نہیں وہاں من ہی رب اللہ بنا اور من ہی کھانے والا پروسنے والا رسوئی سرو کرنے والا جو ہے وہ بھی من ہی بنا اور بھوجن کرنے والا جو راجا ہے وہ بھی من ہی بنا تو من ہی بھوکتا بنا من ہی گراہک بنا اور من ہی بھوج بنا پرنتو یہ من بھی جب کام کر رہا ہے جب من کو پریرنا دینے والا آتما بدھمان ہے آتما نہیں ہوتا تو من اس سمے گرہن نہیں کر سکتا اور سشکتی میں بھی آتما ہی گرائمان ہے اس کا ہم غور کرتے ہیں جب ہم گہری نیند میں سوتے ہیں تو گہری نیند میں ہم یہ انوبھو گہری نیند میں ہم کو کوئی انوبھو نہیں اس سمے ہمارے سوکھ شریر بھی سو رہا ہے اور سوکھ کے شریر بھی سو رہا ہے آم اسی سب سوکھتے اہنکار بھی سو رہا ہے اس میں اہنکار کا بھی بوجھ نہیں اور جس سمے جاگتے ہیں اس میں یہ انوبھو کرتے ہیں کہ سکھ نہ ہم سواپن نہ کسی اویلیبل میں سکھ پور کر سویا مجھے کچھ بھی پتا نہیں تو دو وقتوں کا انوبھو ہوا ایک تو سویا سواد کا انوبھو ہوا سونے کا انوبھو اور دوسرا میں سکھ میں تھا یہ بھی انوبھو کہیں انتکرن کو سمرپت کیے اور اس سنسکار کے کارن من یہ انوبھو کر رہا ہے کہ میں سکھ پور کر سویا آپ کا انوبھو کرنے والا بھی اس سمے انتکرن ہوا اور وہ انتکرن میں اپنے سامرتھ نہیں آئی جس میں سو رہے تھے اس سمے ہی وچار ملتا کہ میں سو رہا ہوں جاگنے کے بعد یہ وچار آیا کہ میں سو رہا ہوں میں اسپشٹ ہوں کہ جس میں ہم گہرے سو رہے تھے ایک دم گہری نیند میں تھے اس سمے ہم کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم سو رہے ہیں اس سمے تو کتابوں کو پڑھتا ہے نا آورن ہے چاروں کہ اس سمے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم سو رہے ہیں جاگنے کے بعد میں ہوتا ہے کہ سکھم اہم آشواسن یہ دونوں وقتوں کا سکھ کا اور سواد کا دونوں کا انوبھو تب ہوتا ہے جب کہ ہم جاگتے ہیں پر اس سمے سکھ تھا اس سکھ کو بھولنے والا اور سکھ روپ یہ کون تھا ضرور آتما تھی آتما کا اپنا سوروپ آنندات ہے اس بات کا انوسندھان ہوتا ہے جاگنے کے بعد میں سشکتی سے اٹھنے کے بعد میں اس بات کا انوسندھان ہوتا ہے تو آتما کا سوروپ آنند میں ہے اس کا بھی ہم انوبھو کرتے ہیں پر سشکتی میں بھی آتما وراجمان تھا اس پرکار جاگرت سوپن اور سشکتی ان تینوں میں کہیں آتما وراجمان ہے بھگوان کہہ رہے ہیں آتما گیانمے آتما گیانمے ہے وہ جاگرت سوپن اور سشکتی جاگرت میں بھی وہ وشوں کو بھوکتا ہے سوپن میں من کے دوارا وشوں کو بھوکتا ہے اور سشکتی میں وہ اپنے آنند کا بھی انوبھو کرنے والا ہوتا ہے جس کا پرامرش بعد میں انتکرن کو بھی ہوتا ہے کہ میں سکھ پورک سو رہا تھا اور مجھے سکھ کا انوبھو پراپت ہو رہا تھا پر آتما اس سمے سکھ کی استھتی میں تھا یہ سکھ کا انوبھو وہ کہیں کر رہا ہے تو اس پرکار آتما گیان میں ہو کر کے جاگرت سوپن سشکتی تینوں اوستھاؤں میں گیان میں ہو کر کے آتما وراجمان ہے وہ شدھ ہے مایا کے بیچ میں ہے تو انہیں بھی مایا سے پربھاوت نہیں ہے اور وہ ویترکت وہ انتریامی ہونے کے کارن جیو سے بھی الگ ہو کر کے وراجمان ہے اور سکھاش رہے گا وہ امن رہے گا وہ گروہ کے دوشوں سے پربھاوت نہیں ہوتا ہے وہ مایا بچی ہی ہے مایا کی بچیوں کے دوارا آتما کا کہیں بعد میں انوسندھان ہوتا ہے اور مایا کے دوارا سکھوں کو ڈھونڈواتا ہے انتریامی وہ جو جیو ہے وہ جیو مایا کے دوارا سکھوں کو بھوکتا ہے میں دیہ سکھوں کو بھوکتا ہوا وراجمان ہوتا ہے یا اہنکار سکھوں کو بھوکتا ہوا وراجمان ہوتا ہے تو مایا بچی ہی پیے تھے آتما کے کارن مایا رشتی کے دوارا وہ چیشا کرتے ہوئے پرتیت ہوتا ہے تو جیسے آتما الگ ہے وہ سب سے بھن ہو کر کے مایا میں جا کے سمپرکت ہو کر کے وراجمان نہیں ہے ایسے گوپیوں میں بھی آتما ہوں اور اس آتم تتو کو جس سے پہچان لیا اسے ہی سکھ کی پراپتی ہوگی خود یہ جو بھگوان نے اپدیش دیا سب کو دکھانے کے لیے موہ دینے کے لیے मोहिनी भगवान के रूप में अकड़ों को विमोहित करने के लिए। और भोले में दूसरा जो अर्थ है वो दूसरा अर्थ प्रकट करते हुए कह रहे हैं, बोले गोपियों आत्मा ज्ञानमय है, मैं ही तुम्हारी आत्मा हूं, मैं ज्ञानमय है, मैं सदा सदा तुम्हारा स्मरण करते रहता हूं, एक क्षण के लिए भी तुम मुझसे दूर नहीं होती और मैं तुमसे दूर नहीं होता। ज्ञानमय तुम और मैं दोनों ही परस्पर एक दूसरे का स्मरण करते हुए विराजमान है। जैसे कहा गोपियों जब इस समय मैं तुमसे अलग होकर के विराजमान हूं, परंतु गुणाश्रय गोपियों तुम ही बताओ, तुम कभी मेरे कटाक्ष, मेरी मधुर वाणी, मेरे स्पर्श, इनके सुख से क्या आप कभी अलग रहती हो क्या? गुणाश्रय अनवेली मैं आपके मधुर रूप गुण का निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए ही विराजमान गुणान्वय, मैं गुणान्वय हूं, मैंने आपके गुणों का मथुरा में रहते हुए भी निरंतर निरंतर ध्यान कर रहा हूं। ये प्रेम की बोली है, श्री शांति का प्रेम में कह रहे हैं, ज्ञान की बोली पहले बोल रही थी, पर इसके भीतर जो भाव से सब हुआ था वो प्रेमी का भाव था, धर्म हो जाता है। कोई यदि इन श्लोकों को सामान्यता समझे, सामान्य कर लगे तो ये लगेगा अरे भगवान को वेदांत का उद्देश्य कर रहे हैं, भगवान को ब्रह्म तत्व का उद्देश्य कर रहे हैं, परंतु तत्वता श्री श्याम सुंदर ब्रह्म तत्व का उद्देश्य नहीं कर रहे हैं। श्याम सुंदर को प्रियाओं के सामने अपने हृदय के प्रेम निवेदन को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गोपियों आत्मा आप ही मेरी आत्मा होकर के विराजमान हूं, मैं आपके आत्मा होकर के विराजमान हूं, ज्ञान में मैं कभी भी आपके ज्ञान को छोड़ता नहीं हूं और आपके ज्ञान में भी ज्ञान में भी ज्ञान का विषय बन करके सर्वदा में विराजमान हूं। गोपियों शुद्ध खबरदार मुझे पार्थिव मत समझना, मेरी प्रीति आपके साथ में परम शुद्ध होकर के ही विराजमान है। व्यतिरिक्त तो यदि मैं कभी लीला शक्ति के द्वारा विरोध भी प्राप्त कर लेता हूं उस समय भी गुणान्वय आपके ही मधुर मुस्कान शब्द स्पर्श रूप रस गंध का निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए मैं विराजमान हूं। जैसे कि सुषुप्ति स्वप्न जागृत इन तीनों अवस्थाओं में आप ही मेरे हृदय में विद्यमान रहती हो, मैं भी आपके हृदय में विद्यमान रहता हूं। गोपियों जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसी भी अवस्था में मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं, निरंतर निरंतर आप ही मेरे हृदय में बसी रहती हो। सुषुप्ति में भी मैं आपका ही ध्यान करता हूं, सुषुप्ति में भी आपकी स्मृति समाप्त नहीं होती। विद्वजनों ने कहा कि यदि कृष्ण नाम कृष्ण स्मरण करते हुए कोई शोर और कृष्ण नाम लेकर के जगे तो जो सुषुप्ति का समय है वो भी भगवत भजन में गिनने में आ जाए, उसकी भी गणना भगवत भजन में हो जाए। श्री शांतिकर कह रहे हैं कि मैं आपका स्मरण करते हुए ही सोता हूं और आपका स्मरण करते हुए ही जागता हूं, अतः सुषुप्ति में भी आप ही मेरे हृदय में निरंतर निरंतर विद्यमान होकर के बढ़ाएंगा। आगे बोले ये इंद्रिया खान ध्याए मथा स्वप्न मनुष्यता तत्मुद्यांद्रिया प्रतिपद्यते, बोले ये इंद्रिया खान ध्याए मथा स्वप्न मनुष्यता। जैसे कोई व्यक्ति जिस समय सोता है उस समय वह स्वप्न में अपने हृदय की अनेक अनेक वासनाओं को ही भोगता हुआ दिखता है। स्वप्न सिद्धांत है, प्रायः नाम का एक मनोवैज्ञानिक स्वप्न सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वो प्रसिद्ध सिद्धांत है स्वप्न का सिद्धांत। तो भाई हमारा मस्तिष्क जो है उस मस्तिष्क के तीन विभाग है, एक विभाग है चेतन, एक विभाग है अर्धचेतन और एक है अचेतन। चेतन मस्तिष्क में जितनी भी इच्छाएं आती हैं उन इच्छाओं को जो समाज के अनुरूप होती है, हमारे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप होती है, उन इच्छाओं को हम व्यक्त कर देते हैं और उन इच्छाओं को सबके सामने भोग लेते हैं। परंतु जिन इच्छाओं को हम सामाजिक वर्जनाओं के कारण या अपने अनुमान के कारण सबके सामने भोग नहीं पाते हैं, हमारे चेतन मस्तिष्क में ईगो नाम का, अहम नाम का एक पहरेदार है और वो पहरेदार उन वासनाओं को डाल देता है अर्धचेतन और उच्चेतन की जेल में कोठरियों में बंद कर देता है, पहरेदार बनने से बैठा है और वो उनको सामने नहीं आने देता। जब हम सो जाते हैं उस समय ईगो भी सो जाता है, हमारा जो आम है वो आम भी सो जाता है, और उस समय अर्धचेतन और अचेतन मस्तिष्क में दबी हुई वे वासनाएं ही बाहर निकल गए थे, स्वप्न के रूप में परिणत होकर के हमें एक कल्पना विधान के द्वारा पूरी दिशावली के रूप में सामने दिख जाती है। ये सामान्य मनोवैज्ञानिकों का ये विचार। तो कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति कोई दुर्लभ वस्तु को भोग रहा है, परंतु जो वो जागता है, जैसे उसकी नींद पूरी होती है, उसका वो सुख समाप्त हो जाता है, ऐसे कोई स्वप्न में व्यक्ति महा महा कष्ट भोग रहा है, मन में विचार कर रहा है कि मैं जी पा रहा हूं और इस समय मृत्यु संज्ञा के ऊपर पड़ा हुआ हूं और हजारों वैद्य आ रहे हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं और बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया है, परंतु उसका भय दूर नहीं हो सकता। भय दूर हो रहा था कोई जगा दे, अरे भाई कैसे कितनी मार रहा है, सोते सोते कैसे पुकार रहा है, जाग 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 क्या आज हुई, जाग 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 जाओ जाग जाओ। तो वो व्यक्ति एकदम भर लाने उठे, उसने उसे कुछ सपना देखा था, ऐसा देखा था। तो जैसे जागने से उसका भय जो है वो भय भी दूर हुआ, या सुख है तो सुख दूर हुआ। श्री प्रयागराज से श्याम सुंदर वो ही स्वप्न सिद्धांत की बात को प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि लेने इंद्रियाकान ध्याय को मथा स्वप्न बदलता है। जैसे स्वप्न में कोई इंद्रियों के विभिन्न विषयों का सेवन कर रहा है, परंतु यदि उसको जला दिया जाए तो उत्थता जैसे स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति उस सारे सपने को फिर मृता समझने लगता है, झूठा समझने लगता है। ऐसी गुणों आपकी दशा है, मैं तो आपके साथ में साक्षात मिलन प्राप्त किए हुए हूं, परंतु मेरे साक्षात मिलन को आप भ्रम में ऐसा समझ लेती हो कि अरे ये तो हमने स्वप्न देखा, ये तो हमारे मन की स्फूर्ति थी, सत्यता कोई स्फूर्ति नहीं है। मैं तो आपकी सेवा करते हुए सर्वदा सर्वदा आपके पास में ही जलाई मान ली। ये प्रार्थना में चंद्र प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि गुरुकरण कि जैसे स्वप्न से उत्थित व्यक्ति अपने उस स्वप्न को झूल करके मानता है, ऐसे मेरे साथ में तुम्हारा जो साक्षात मिलन हो रहा है उसको तुम झूल करके मान रहे हो, परंतु वह झूठ नहीं है। तन मनोध्यास इंद्रियाई विनिद पद्धति, जैसे विनिग्रह जागा हुआ व्यक्ति तन विरुद्ध स्वप्न को छोड़ करके प्रत्येक पद्धति जैसे यथार्थ में सुख या दुख को अनुभव करने लगता है, अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, ऐसे ही तुम भी मेरे तुम्हारे साथ में जो साक्षात मिलन हो रहा है तो साक्षात मिलन को तुम सुख या दुख रूप में तुम दुख रूप में अनुभव करने लगते हो, वो साक्षात मिलन को समझती हो। ये हमारे मन का बयान था, हमने केवल स्वप्न देखा था प्यारे हमारे पास में थोड़ी है, जब ऐसा नहीं है मैं तो तुम्हारे पास में सर्वदा सर्वदा क्रिया करते हुए ही मिला। ज्ञान की दृष्टि से कहा कि गोपियों संसार का जितना भी सुख दुख है सब झूठा है, ज्ञान में जागृत होकर के आपको तत्व का विचार करो, ये विचार करो कि मन के अभ्यास के कारण ही सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, इस मन को जीत लो, मन को जीत लोगे तो ये अभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी, मन को बुद्ध ब्रह्म में लगा दो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, वैराग्य की निवृत्ति हो जाएगी। ये तो था बहकाने का धोखा देने वाला धोखे राज साधा मैंने काले बच्चे का भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ऊपर से दिखाने में दूसरों को धोखा देने के लिए ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, बोले गोपियों जैसे स्वप्न जो है वो स्वप्न से जागने के बाद में व्यक्ति वास्तविक स्थित होता है, ऐसे सारा संसार का जितना भी सुख है वो सब स्वप्नवत है, उसको स्वप्नवत करके मानो और ब्रह्म आपको तत्व में ही मुझको ब्रह्म समझते हुए मुझ में चित्र लगाओ, ये सब धोखेबाजी बात कही, परंतु वास्तविक हृदय की बात कह रहे हैं, बोले गोपियों मेरा तुम्हारे साथ में जो मिलन है उस मिलन को तुम शक्ति करके ही मानो, उसको कभी झूठ करके मत मानो। तुम अज्ञान तुम प्रेम की विमोहता के कारण प्रेम में विमोहित होने के कारण तुम ऐसा मान लेते हो कि हमने तो स्वप्न देखा, परंतु वो स्वप्न नहीं है, मैं तो सदा तुम्हारी सेवा करते हुए जाएंगे। सांसद के ये जो पत्रिका है श्यामचंद्र की, गजब बिल्कुल मुझे तो प्रेम प्रेमी के रूप में आप प्रियाओं को धन प्रदान कर रहे हैं। बोले हे प्रिय, मैं तो सदा सदा तुम्हारी सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ, सदा सेवा करता हूँ, परंतु हाय इस प्रेम के कुहक का क्या निरूपण किया जाए, तुमको कैसे समझाया जाए, तुम मेरे साक्षात मिलन को सत्य मान बैठती हो और फिर हमें जाते होने लगती गोपियों। यस्व हम भवती नाम नहीं जिन्हें भी आज जिन्हें भी आता ध्याय से मन खाऊ एक दंत समान आयो जो सांख्यम मनीषण तप त्याग तपो जम सत्यम समुद्रांता एवाप। अगर गुप्ता करो तुम को जब विश्वास नहीं है तो तम निरुद्ध्या इंद्रियाई विमुद्रा प्रति पद्यता, तुम जिस स्वप्न को स्वप्न समझ रही हो तो स्वप्न नहीं था वो साक्षात ही था, इसको कैसे जानोगी, वो तम निरुद्ध्या इंद्रियाई विमुद्रा प्रति पद्यता। जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति अंदर पड़ता है, अरे मैं तो यहां पर रहता हूं, मैं कहां अपना सपना देख रहा था।